नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप सुन रहे हैं डेली बिजनेस कास्ट। आइए सुनते हैं व्यापार से जुड़े आज के समाचार। देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों की ग्रोथ की रफ्तार फिर से सुस्त पड़ती दिख रही है। मार्च में IHS मार्केट इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग PMI घटकर 7 महीने के निचले स्तर 55.4 पर आ गया। फरवरी में यह सूचकांक 57.5 पर रहा था। सोमवार को जारी एक मासिक सर्वे में कहा गया है कि कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों से देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों पर असर पड़ा है। केंद्र सरकार ने दिवाला कानून में संशोधन करते हुए MSMEs के लिए प्री पैकेज्ड रिजोल्यूशन प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा है। एक अधिसूचना के अनुसार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधन के लिए 4 अप्रैल को एक अध्यादेश जारी किया गया है। करीब 2 सप्ताह पहले ही IBC के कुछ प्रावधानों का स्थगन समाप्त हुआ है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने कृष्णापट्टनम बंदरगाह में विश्व समुद्र होल्डिंग्स की 25% हिस्सेदारी खरीदी है। कंपनी ने यह सौदा 2800 करोड़ रुपए में किया है। इस डील के बाद कृष्णापट्टनम बंदरगाह में अडानी पोर्ट्स की हिस्सेदारी 75% से बढ़कर 100% हो गई है। इस बंदरगाह की सालाना क्षमता करीब 6.5 करोड़ टन की है। और देश में लगातार 6ठे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। उधर तेल का उत्पादन बढ़ाने के मसले पर ओपेक और ओपेक प्लस देशों के बीच सहमति बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। इसके अलावा सोमवार को गोल्ड में 15 रुपए की मामूली गिरावट आई, जिसके बाद इसके भाव 44,949 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए, जबकि चांदी 216 रुपए की गिरावट के बाद 64,222 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। और अब हाल जानते हैं आज के शेयर बाजार का। कोरोना के रिकॉर्ड मामले आने के बाद भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार को भारी बिकवाली का दौर चला। सेंसेक्स करीब 2% गिरावट के बाद 49,159 पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक के शेयर सबसे ज्यादा 5.5% तक गिरे। सेंसेक्स ने इंट्राडे में 48,580 के निचले स्तर को भी छुआ। वहीं निफ्टी 1.5% की गिरावट के बाद 14,638 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 14,500 के अहम स्तर से भी नीचे आया। सेक्टोरल इंडाइसेस में PSU बैंक इंडेक्स 4% की गिरावट के साथ सबसे ज्यादा नुकसान में रहा। आज के सत्र में IT और मेटल इंडेक्स ही सिर्फ हरे निशान में बंद होने में कामयाब रह सके। IT इंडेक्स 2% और मेटल इंडेक्स करीब 1% बढ़कर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट भी आज बेंचमार्क इंडेक्स के लाइन में रहे। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% और मिड कैप 1.3% लुढ़क कर बंद हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कैसा दिख रहा है बाजार का मूड, ये जानने के लिए चलते हैं केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया जी की तरफ।
नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो में। सर, देश में कोरोना के जो केसेस हैं वो 1 लाख के पार चले गए हैं पहली बार। हालांकि भले ही हम पहले की तुलना में इस बार ज्यादा तैयार नजर आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो पार्शियल लॉकडाउन लगा है, UP में भी कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और भी राज्य धीरे धीरे करके नए नए गाइडलाइंस लेकर के आ रहे हैं। क्या ये जो नियम आ रहे हैं, नए नए ये जो सिचुएशन बन रही है, इसे नॉर्मल काउंट किया जाए या आने वाले समय में ये बाजार के लिए एक बड़ा नेगेटिव ट्रिगर बनता दिख रहा है?
देखिए उपासन, जैसा कि आपने कहा कि इस बार हम पहले से ज्यादा तैयार हैं, तो जिस तरीके से हम पहले से ज्यादा तैयार हैं उससे मुझे लगता है बाजार में ये ज्यादा बड़ा ट्रिगर तो नहीं है, पर हाँ बैंकिंग, NBFC, ट्रैवल, होटल, कोरियर, लॉजिस्टिक, इस तरह के स्टॉक्स पे और सेक्टर्स के लिए जरूर आने वाला समय जो है वो अच्छा नहीं रह सकता है। उपासना जी,
जी सर, आपने 2-3 सेक्टर्स को गिनाया, ये हम पहले भी बात करते हैं, जब भी रिस्ट्रिक्शंस की बात आती है तो सबसे पहले हमारी नजर इन पर जाती है कि इनके स्टॉक्स को खाली करना चाहिए। लेकिन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो होटल इंडस्ट्री जो है वो लगातार उसे झटका लगते जा रहा है। इस इकोनॉमी एंगल से होटल इंडस्ट्री का प्रभावित होना कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है इकोनॉमी के लिए प्लस बाजार के लिए?
देखिए होटल इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो होटल इंडस्ट्री एक सीजनल बिजनेस होता है, जिसमें वो किसी भी लोकेशन पे वो होटल हो और उनमें जो बिजनेस आता है वो सीजनल ही आता है। और मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे ये कोविड की वेव प्लस माइनस होगी वैसे वैसे इनका बिजनेस डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे ही कोविड की वेव में हमने नरमी आते हुए देखी थी, हमने देखा था ऑक्यूपेंसी जो है वो पहले से कहीं अच्छी थी और होटल्स वालों के जो बिजनेस है, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल कंपनीज, इन सबके बिजनेस जो है वो पहले से काफी अच्छे गए। तो मुझे लग रहा है कि जो अभी तक सीजन जो है वो विंटर सीजन या तमाम छुट्टियों के सीजन के हिसाब से होते थे, पर अब क्योंकि एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है और और अब लोगों को ऐसा कोई छुट्टी का नहीं है, वो बाहर घूमते हुए भी अपने बच्चों को क्लासेस वगैरह अटेंड करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये जो पैटर्न है वो कोविड वेव के ऊपर डिपेंड करेगा और ये सीजन उसी तरह से रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि पहले से कहीं ज्यादा, अगर एनुअली इसको हम देखेंगे तो पहले से कहीं ज्यादा ऑक्यूपेंसी रहेगी रेशियो वाइज, और रूम बुकिंग रेशियो जो हम लोग होटल बुकिंग के लिए देखते हैं, होटल इंडस्ट्री के लिए देखते हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा होगी। उपासना जी।
जी सर, पिछले सप्ताह यूएस से अच्छे हम लोगों को संकेत मिले थे, पेरोल के आंकड़े जो उम्मीद से ज्यादा बढ़कर के आए थे। इस हिसाब से उम्मीद लगाया जा रहा था कि जो भारतीय बाजार आज खुलेंगे तो वो पॉजिटिव मूड के साथ रह सकते हैं, लेकिन इसके उल्टे आज बाजार करीब 2-2% का कट लगा करके बंद हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, अगर आज के बाजार को आप देखेंगे तो आज के बाजार में अगर निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो शेयर है एसपीएल टेक, टीसीएस, ब्रिटानिया, विप्रो, इंफोसिस। इनफैक्ट इंफोसिस ने अपना 52 वीक का हाई रहा। और अगर मैं गिरने वाले शेयर्स की बात करूँ तो बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आइशर मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे। अब अगर हम इसको बहुत ध्यान से देंगे तो ये पूरा का पूरा कोविड के ऊपर डिपेंडेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंडस्ट्रीज है उनमें जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज का जो रेशियो है और जो ऑटो इंडस्ट्री का ऑटोमोबाइल्स का रेशियो है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए आईटी आज अपने इंडस्ट्रीज को जो है वो संभाल नहीं पाया और हमने जो है मार्केट में ये कोविड वेव की वजह से गिरावट आते हुए देखी। उपासना जी।
जी सर, आगे जाकर के ये गिरावट और ज्यादा कितनी हम लोगों को, क्या यहाँ से कौन से रेंज नजर आ रहे हैं बाजार के लिए?
देखिए, बाजार में आज भी सपोर्ट जो 14,400-350 का सपोर्ट है, बाजार ने वहां से सपोर्ट दिया है, लेकिन मेरा मानना है क्रूशियल सपोर्ट के जो दो लेवल है वो 14,250 है और 13,800 है। अगर ये लेवल 13,800 का लेवल टूटता है तो हाँ जरूर मार्केट में एक चिंता की बात हो सकती है। उपासना जी।
जी सर, देश में जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आए हैं वो 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, क्या ये भी कोविड की वजह से हुआ नजर आ रहा है या फिर कोई और भी कारण नजर आ रहा है?
देखिए, जो आंकड़े हैं ये आंकड़े मतलब कोविड की वेव की अगर हम बात करें तो पिछले 10 दिन के अंदर गहराई और ये आंकड़े उसके पहले के हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्च महीने का भी इम्पैक्ट था, क्योंकि और चूंकि डिमांड जो है वो काफी पहले हो चुकी थी और लोगों ने डिमांड को एंटिसिपेट करते हुए प्रोडक्शन पिछले महीनों में काफी अच्छा किया था, पर चूंकि जैसे रिपोर्ट आ रही थी मार्च के फर्स्ट वीक से ही बाजार में स्लो डाउन देखा जा रहा था, तो मुझे लगता है कि वो स्लो डाउन की वजह से ये पीएमआई के आंकड़े नीचे आए। और जिस हिसाब से अप्रैल चल रहा है, मतलब अभी ये जो फ्रेश लॉकडाउन महाराष्ट्र में बना है, तो मुझे लगता है कि जो जो महाराष्ट्र बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनका इम्पैक्ट आगे भी पीएमआई में बना रहेगा। उपासना
जी, सर शुक्रवार को ऑटो सेल्स के आंकड़े आए थे, लो बेस की वजह से अगर सालाना बेसिस पर देखें तो ये आंकड़े काफी अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम ब्रॉडर पिक्चर पे गौर करें तो वो कुछ और ही स्टेटमेंट दे रही है। जैसे कि FY21 जो अभी बीता है इसमें कुल लगभग 19 मिलियन गाड़ियां बेची गई हैं ओवरऑल मिलाकर के, लेकिन ये जो FY 2015 के आंकड़े हैं उस वक्त करीब 20 मिलियन यूनिट बेचे गए थे, हम उस साल के स्तर से भी नीचे जा चुके हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है?
उपासना जी, अगर हम थोड़ी सी अपनी मेमोरी को पीछे ले जाएं और अगर हम याद करें तो कोविड के जस्ट कोविड जब शुरू हुआ, आई थिंक कोविड का जो वेव स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो फरवरी से कुछ 2020 से आना शुरू हुआ था, इफ आई एम राइट। तो अगर उसके पहले हम जाएं अक्टूबर नवंबर से, क्योंकि अक्टूबर 2019 की जो दिवाली गई थी उसी के बाद से ऑटोमोबाइल्स के जो आंकड़े आ रहे थे वो अच्छे नहीं आ रहे थे। इनफैक्ट उस समय साउथ में कुछ एंसिलरीज ने और कुछ फैक्ट्रीज ने अपने नंबर ऑफ डेज जो ऑपरेटिंग है उनको कम किया था। तो 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 से ही हम कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक डिक्लाइन आता हुआ देख रहे हैं, पर जैसा कि आपने कहा कि लो बेस की वजह से नंबर्स अभी अच्छे लग रहे हैं, पर अगर हम ग्लोबली कोरोना के काल में भी देखें तो ग्लोबली भी ऑटो सेल्स में 8-12% की गिरावट आई है विभिन्न कंपनियों के आंकड़ों में। तो मुझे लगता है ऑटो जो है वो आने वाले समय में जो हमको लग रहा था, जैसा मतलब अगर मैं दिवाली की बात करूं तो मुझे भी पर्सनली ऐसा लग रहा था सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के चलते जो है वो गाड़ियों की सेल बढ़ सकती है, टू व्हीलर्स की सेल बढ़ सकती है, क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवॉइड करेंगे। पर जब हमने अभी इसका सर्वे किया फरवरी के महीने में तो लोगों का ये कहना था कि लोग आज के टाइम पे ईएमआई जो है वो अपनी बढ़ाना नहीं चाहते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ईएमआई ना बढ़ाना जो लोगों के एक दिमाग में आ चुका है वो कहीं ना कहीं ऑटो सेल्स को इम्पैक्ट कर रहा है। उपासना जी।
जी बिल्कुल सर, आज सोना चांदी में बहुत सुस्त मोमेंटम देखने को मिला, जबकि पिछले सप्ताह कुछ चमक देखी गई थी, इस हिसाब से इम्पोर्ट बढ़ाया था हमारे यहाँ के ट्रेडर्स ने, लेकिन आज फिर इनके रफ्तार जो है वो सुस्त नजर आई है, यहाँ से क्या सलाह होगी आपकी?
उपासना जी, टेक्निकली अगर बोलूँ तो जहाँ पे हमने बोला था 1680-1690 के आसपास की हमें तेजी लग रही है, अब ये जो लेवल है, ये लेवल पे आने के बाद मार्केट काफी टाइम से 21 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है सोने के अंदर, और 1732 डॉलर के आसपास आज फिर इसने दोबारा लिया है। तो ट्रेडर्स को ये राय रहेगी कि जब तक 1732 डॉलर क्रॉस नहीं करता है तब तक उन्हें इससे दूर रहना चाहिए बाय करने के लिए। इनफैक्ट वो शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। हाँ, 1732 के ऊपर अगर सोना आधे घंटे से एक घंटे के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर हम जरूर इसको 1770 डॉलर के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। उपासना जी।
जी नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी सर, धन्यवाद।
तो ये था आज का डेली बिजनेस कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपनी साथी उपासना वर्मा के साथ। सुनते रहिए नवभारत गोल्ड। धन्यवाद।